بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ جیونت نتیہ ستا جو جگت ویوستھا کو سنبھالے ہوئے ہے، واسطو میں اس کے سوا کوئی الہ یعنی ایش پربھو نہیں ہے۔ اے نبی، اس نے تم پر یہ کتاب اتاری جو ستے لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی پشٹی کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کے مارگ درشن کے لیے تورات اور انجیل اتار چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو ستے اور اسطے کا انتر دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے آدیشوں کو سویکار کرنے سے انکار کریں، ان کو نشچے ہی سخت سزا ملے گی۔ اللہ اپار شکتی والا ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔
ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔
دھرتی اور آکاش کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہارے روپ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست گہری سمجھ والے کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے۔ اے نبی، وہی رب ہے جس نے یہ کتاب تم پر اتاری ہے۔ اس کتاب میں دو پرکار کی آیتیں ہیں، ایک اٹل جو کتاب کا مول آدھار ہیں، اور دوسری اپلکشت۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وے فتنے یعنی گمراہی کی تلاش میں سدیو اپلکشت ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ان کو منمانا ارتھ پہنانے کا پریاس کیا کرتے ہیں، جبکہ ان کا واسطوک ارتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے وپریت جو لوگ گیان میں پکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی اور سے ہیں۔ اور ستی یہ ہے کہ کسی چیز سے اچت شکشا کیول بدھیمان لوگ ہی پراپت کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ پالنہار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کر دینا، ہمیں اپنے دیا ندھی سے دیالوتا پردان کر کہ تو ہی واسطوک داتا ہے۔ پالنہار، تو نشچے ہی سب لوگوں کو ایک دن اکٹھا کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی سندیہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔
ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد
جن لوگوں نے انکار کی نیتی اپنائی ہے उन्हें अल्लाह के मुकाबले में न उनका धन कुछ काम देगा न संतान। वे नरक यानी जहन्नम का ईंधन बनकर रहेंगे। उनका अंजाम वैसा ही होगा जैसा फिरौन के साथियों और उनसे पहले के अवज्ञाकारियों का हो चुका है कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया। और सत्य ये है कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। अतः ऐ नबी, जिन लोगों ने तुम्हारे पैगाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, उनसे कह दो कि निकट है वो समय जब तुम परास्त हो जाओगे और जहन्नम की ओर हांके जाओगे, और जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है।
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
تمہارے لئے ان دو گروہوں میں ایک شکشا پرد نشانی تھی जो बद्र की लड़ाई में एक दूसरे के मुकाबिल हुए। एक गिरोह अल्लाह के मार्ग में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह विधर्मी था। देखने वाले आंखों से देख रहे थे कि विधर्मी गिरोह ईमान वाले गिरोह से दोगुना है, किंतु नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी विजय और सहायता से जिसको चाहता है मदद देता है। नजर रखने वालों के लिए इसमें बड़ी शिक्षा निहित है।
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
لوگوں کے لیے من پسند چیزیں ستریاں سنتان سونے چاندی کے ڈھیر چنے گھوڑے चौपाए और खेती की जमीनें बड़ी लुभावनी बना दी गई हैं, किंतु ये सब दुनिया की कुछ दिनों के जीवन की सामग्रियां हैं। वास्तव में जो अच्छा ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। कहो, मैं तुम्हें बताऊं कि इनसे अधिक अच्छी चीज क्या है। जो लोग धर्म परायणता यानी तकवा की नीति अपनाएं, उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां उन्हें हमेशा का जीवन प्राप्त होगा। पाकीज़ा पत्नियां उनकी संगिनी होंगी और अल्लाह की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त होगी। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नजर रखता है। ये वे लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक, हम ईमान लाए, हमारी खताओं को माफ कर और हमें जहन्नम की आग से बचा ले। ये लोग धैर्य से काम लेने वाले हैं, सत्यवान हैं, आज्ञाकारी और दानशील हैं, और रात की अंतिम घड़ियों में अल्लाह से क्षमा की प्रार्थनाएं किया करते हैं।
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة الْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
الله نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ یعنی ایش پربھو نہیں ہے اور فرشتے اور سب گیانوان بھی سچائی اور نیائے کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس بلشالی گہری سمجھ والے کے سوا واسطف میں کوئی الہ یعنی ایش پربھو نہیں ہے. اللہ کے نکٹ دین کیول اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو وبھن مارگ ان لوگوں نے گرہن کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کی اس کار نیتی کا کوئی کارن اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے گیان آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے آدیش اور مارگ درشن کے انپالن سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی.
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.
اب یدی اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے انویائیوں نے تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو سمرپت کر دیا ہے. پھر کتاب والوں اور جو کتاب نہیں رکھتے دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کے آگیا پالن اور بندگی کو سویکار کیا. یدی کیا تو وہ سیدھا مارگ پا گئے اور یدی اس سے مکھ موڑا تو تم پر کیول سندیش پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ سوئم اپنے بندوں کے معاملوں کو دیکھنے والا ہے.
ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
جو لوگ اللہ کے آدیش اور مارگ درشن کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان لینے کو اتارو ہو جاتے ہیں جو الہ یعنی ایش پربھو کی مخلوق میں سے نیائے اور سچائی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے کرم دنیا اور آخرت دونوں میں اکارتھ گئے اور ان کا سہائک کوئی نہیں ہے.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے گیان میں سے کچھ انش ملا ہے ان کی دشا کیا ہے؟ انہیں جب اللہ کی کتاب کی اور بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے بیچ فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ اس سے پہلو بچاتا ہے اور اس فیصلے کی اور آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. ان کی یہ نیتی اس کارن سے ہے کہ وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی تک نہیں اور یدی جہنم کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس کچھ دن. उनकी मनगढ़ंत धारणाओं ने उनको अपने दीन के विषय में बड़े भ्रम में डाल रखा है। मगर क्या बनेगी उन पर जब हम उन्हें उस दिन इकट्ठा करेंगे जिसका आना निश्चित है। उस दिन हर व्यक्ति को उसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा और किसी के साथ अन्याय न होगा।
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب।
कहो ए अल्लाह, राज्य के स्वामी तू जिसे चाहे राज्य दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे सम्मान प्रदान करे और जिसको चाहे अपमानित कर दे। भलाई तेरे अधिकार में है, यकीनन तुझे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में, निर्जीव में से जीवधारी को निकालता है और जीवधारी में से निर्जीव को, और जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है।
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير।
ईमान वाले ईमान वालों को छोड़कर इनकार करने वालों यानी विधर्मियों को अपना साथी और यार मददगार हरगिज न बनाएं। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं। हाँ, ये माफ है कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए ऊपरी तौर से ऐसी नीति अपना लो, किंतु अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की ओर पलट कर जाना है। ऐ नबी, लोगों को खबरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे चाहे तुम छिपाओ या प्रकट करो, अल्लाह हर हाल में उसे जानता है। आकाशों और धरती की कोई चीज उसके ज्ञान से बाहर नहीं है और उसका प्रभुत्व हर चीज पर छाया रहता है।
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد।
वो दिन आने वाला है जब हर व्यक्ति अपने किए का फल मौजूद पाएगा, चाहे उसने भलाई की हो या बुराई। उस दिन आदमी ये तमन्ना करेगा कि क्या ही अच्छा होता कि अभी ये दिन उससे बहुत दूर होता। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और वो अपने बंदों का अत्यंत हितैषी है।
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين।
ऐ नबी, लोगों से कह दो कि यदि तुम वास्तव में अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो। अल्लाह तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है। उनसे कहो कि अल्लाह और रसूल का आज्ञा पालन करो, फिर यदि वे तुम्हारी ये बात न माने तो निश्चय ही ये संभव नहीं है कि अल्लाह ऐसे लोगों से प्रेम करे जो उसके और उसके रसूल के आज्ञा पालन से इनकार करते हों।
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم।
अल्लाह ने आदम और नूह और इब्राहिम की संतान और इमरान की संतान को संपूर्ण संसार वालों के मुकाबले में प्रधानता देकर अपने संदेश वाहन के लिए चुना था। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए थे। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। वो उस समय सुन रहा था जब इमरान की स्त्री कह रही थी, मेरे पालनहार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तुझे भेंट स्वरूप अर्पित करती हूँ, वो तेरे ही कार्य के लिए अर्पित होगा, मेरी इस भेंट को स्वीकार कर, तू सुनने और जानने वाला है।
وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء।
फिर जब वो बच्ची उसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा, मेरे मालिक, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है। हालांकि जो कुछ उसने जना था अल्लाह को उसकी खबर थी, और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। खैर, मैंने उसका नाम मरियम रख दिया है, और मैं उसे और उसकी भावी संतान को तिरस्कृत शैतान के फितने से तेरी शरण में देती हूँ। अंततः उसके रब ने उस लड़की को खुशी से स्वीकार कर लिया, उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और जकरिया को उसका सरपरस्त बना दिया। जकरिया जब कभी उसके पास मेहराब यानी इबादत गाह में जाता तो उसके पास कुछ न कुछ खाने पीने की चीज पाता। पूछता, मरियम, ये तेरे पास कहां से आया? वो उत्तर देती, अल्लाह के पास से आया है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ये हाल देखकर जकरिया ने अपने रब को पुकारा, पालनहार, अपनी सामर्थ्य से मुझे नेक संतान दे, तू ही प्रार्थना सुनने वाला है।
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار।
उत्तर में फरिश्तों ने आवाज दी, जबकि वो मेहराब यानी इबादत गाह में खड़ा उपासना कर रहा था कि अल्लाह तुझे यहया की खुशखबरी देता है। वो अल्लाह की ओर से एक आदेश की पुष्टि करने वाला बनकर आएगा, उसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी, पूर्ण संयत होगा, नबी बनाया जाएगा और अच्छों में उसकी गिनती होगी। जकरिया ने कहा, पालनहार, भला मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा? मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी पत्नी बांझ है। उत्तर मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। निवेदन किया, मालिक फिर कोई निशानी मेरे लिए नियत कर दे। कहा, निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बातचीत न करोगे या न कर सकोगे। इस बीच अपने रब को बहुत याद करना और सुबह शाम उसकी तस्बीह यानी महिमा गान करते रहना।
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ।
फिर वो समय आया जब मरियम से फरिश्तों ने आकर कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे चुना और पवित्रता प्रदान की और सारे संसार की स्त्रियों में तुझे आगे रखकर अपनी सेवा के लिए चुन लिया। ए मरियम, अपने रब की आज्ञाकारी बनकर रह, उसके आगे सजदा कर, और जो बंदे उसके आगे झुकने वाले हैं उनके साथ तू भी झुक जा।
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون।
اے نبی، ये छिपी खबरें हैं जो हम तुमको प्रकाशना के द्वारा बता रहे हैं, अन्यथा तुम उस समय वहां मौजूद न थे जब हैकल यानी उपासना गृह के सेवक ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन हो अपनी अपनी कलम फेंक रहे थे, और न तुम उस समय उपस्थित थे जब उनके बीच झगड़ा खड़ा हो गया था।
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين।
और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक आदेश की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह मरियम का बेटा ईसा होगा, दुनिया और आखिरत में प्रतिष्ठित होगा, अल्लाह के निकटवर्ती बंदों में गिना जाएगा, लोगों से पालने में भी बात करेगा और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी, और वो एक नेक व्यक्ति होगा। ये सुनकर मरियम बोली, पालनहार, मेरे यहां बच्चा कहां से होगा, मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। उत्तर मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, वो जब किसी काम के करने का फैसला करता है तो बस कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है। फरिश्तों ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और अल्लाह उसे किताब और गहरी समझ की शिक्षा देगा, तौरात और इंजील का ज्ञान देगा, और इसराइल की संतान की ओर अपना रसूल नियुक्त करेगा। और जब वो रसूल के रूप में इसराइलियों के पास आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूं, मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से पक्षी के रूप की एक आकृति बनाता हूं और उसमें फूंक मारता हूं, वो अल्लाह के आदेश से पक्षी बन जाती है, मैं अल्लाह के हुक्म से जनमानध और कोढ़ी को अच्छा करता हूं, और उसकी अनुज्ञा से मुर्दे को जीवित करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में इकट्ठा करके रखते हो, इसमें तुम्हारे लिए काफी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो।
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم।
और मैं उस शिक्षा और पथ प्रदर्शन की पुष्टि करने वाला बनकर आया हूँ जो तौरात में से इस समय मेरे जमाने में मौजूद है, और इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ उन चीजों को वैध कर दूं जो तुम्हारे लिए अवैध कर दी गई हैं। देखो, मैं तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ, अतः अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, अतः तुम उसी की बंदगी अपनाओ, यही सीधा मार्ग है।
فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين।
जब ईसा ने महसूस किया कि इसराइल की संतान अधर्म और इनकार पर आमादा हैं, तो उसने कहा, कौन अल्लाह के मार्ग में मेरा सहायक होता है? हवारियों यानी साथियों ने उत्तर दिया, हम अल्लाह के मार्ग में आपके सहायक हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, गवाह रहो कि हम मुस्लिम अर्थात अल्लाह के आज्ञाकारी हैं। मालिक, जो आदेश तूने उतारा है हमने उसे मान लिया और रसूल का अनुसरण स्वीकार किया, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले।
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين।
फिर इसराइली मसीह के विरुद्ध गुप्त उपाय करने लगे। उत्तर में अल्लाह ने भी अपना गुप्त उपाय किया और ऐसे उपायों में अल्लाह सबसे बढ़कर है। वो अल्लाह का छिपा उपाय ही था जब उसने कहा कि ऐ ईसा, अब मैं तुझे वापस ले लूंगा और तुझको अपनी ओर उठा लूंगा, और जिन्होंने तेरा इनकार किया है उनसे अर्थात उनकी संगत से और उनके गंदे वातावरण में उनके साथ रहने से तुझे पाक कर दूंगा, और तेरे अनुयायियों को कयामत तक उन लोगों के ऊपर रखूंगा जिन्होंने तेरा इनकार किया है। फिर तुम सबको अंत में मेरे पास आना है, उस समय मैं उन बातों का निर्णय कर दूंगा जिनमें तुम्हारे बीच मतभेद हुआ है। जिन लोगों ने अधर्म और इनकार की नीति अपनाई है उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सजा दूंगा और वे कोई सहायक न पाएंगे।
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين।
और जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म की नीति अपनाई है उन्हें उनका बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा, और खूब जान लें कि जालिमों से अल्लाह हरगिज प्रेम नहीं करता। ए नबी, ये आयतें और तत्व ज्ञान से भरे हुए वर्णन हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और आदेश दिया कि हो जा, और वो हो गया। ये मूल तथ्य है जो तुम्हारे रब की ओर से बताया जा रहा है, और तुम उन लोगों में सम्मिलित ना हो जो इसमें संदेह करते हैं।
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين।
ये ज्ञान आ जाने के बाद अब जो कोई इस विषय में तुमसे झगड़ा करे तो ऐ नबी उससे कहो कि आओ हम और तुम स्वयं भी आ जाएं और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आएं और अल्लाह से प्रार्थना करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। ये बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं, और सत्य ये है कि अल्लाह के सिवा कोई और रब नहीं है, और वो अल्लाह ही की सत्ता है जिसकी शक्ति सबसे बढ़कर है और जिसकी तत्वदर्शिता सारे विश्व में क्रियाशील है। अतः यदि ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़े तो इनका फसादी होना स्पष्ट हो जाएगा, और अल्लाह तो फसादियों के हाल से परिचित ही है।
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون।
أي نبي कहो, ए किताब वालो, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें, उसके साथ किसी को साझी ना ठहराएं, और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब न बना ले। इस दावत को स्वीकार करने से अगर वे मुंह मोड़ें तो साफ कह दो कि गवाह रहो हम तो मुस्लिम यानी केवल अल्लाह की बंदगी और आज्ञा पालन करने वाले हैं।
या अहलल किताब लिम तुहाजून फी इब्राहीम वमा उन्जिलत التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين।
ऐ किताब वालो, तुम इब्राहिम के दीन के बारे में क्यों झगड़ा करते हो? तौरात और इंजील तो इब्राहिम के बाद ही उतरी हैं। फिर क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? तुम लोग जिन चीजों का ज्ञान रखते हो उनमें तो अच्छी तरह वाद विवाद कर चुके, अब उन मामलों में क्यों वाद विवाद करने चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं? अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। इब्राहिम न यहूदी था न ईसाई, बल्कि वो तो एक एकाग्रचित्त मुस्लिम था। और वो हरगिज मुशरिकों यानी बहुदेव वादियों में से न था। इब्राहिम से संबंध रखने का सबसे अधिक अधिकार किसी को पहुंचता है तो उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने उसका अनुसरण किया। और अब ये नबी और इसके मानने वाले इस संबंध के अधिक अधिकारी हैं। अल्लाह केवल उन्हीं का समर्थक और सहायक है जो ईमान वाले हैं।
فَتُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
ऐ ईमान लाने वालों, किताब वालों में से एक गिरोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हें सीधे मार्ग से हटा दे, हालांकि वास्तव में वे अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे हैं, किंतु वे इसे जान नहीं पा रहे हैं। ऐ किताब वालों, क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो जबकि तुम स्वयं उनका निरीक्षण कर रहे हो? ऐ किताब वालो, क्यों सत्य पर असत्य का रंग चढ़ाकर संदिग्ध बनाते हो? क्यों जानते बूझते सत्य को छिपाते हो?
وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم।
किताब वालों में से एक गिरोह कहता है कि इस नबी के मानने वालों पर जो कुछ उतरा है उस पर सुबह को ईमान लाओ और शाम को उससे इनकार कर दो, शायद इस उपाय से ये लोग अपने ईमान से फिर जाएं। ये लोग आपस में कहते हैं कि अपने धर्म वालों के सिवा किसी की बात न मानो। ऐ नबी, उनसे कह दो कि वास्तव में मार्गदर्शन तो अल्लाह ही का मार्गदर्शन है और ये उसी की देन है कि किसी को वही कुछ दे दिया जाए जो कभी तुमको दिया गया था, या ये कि दूसरों को तुम्हारे रब की सेवा में पेश करने के लिए तुम्हारे विरुद्ध ठोस प्रमाण मिल जाए। ऐ नबी, इनसे कहो कि श्रेष्ठता और बड़ाई अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे प्रदान करे। वो व्यापक दृष्टि वाला है और सब कुछ जानता है। अपनी दयालुता के लिए जिसको चाहता है खास कर लेता है और उसकी उदारता एवं अनुकंपा बहुत बड़ी है।
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين।
किताब वालों में कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके भरोसे पर माल और दौलत का एक ढेर भी दे दो तो वो तुम्हारा माल तुम्हें अदा कर देगा, और किसी का हाल ये है कि अगर तुम एक दीनार के मामले में भी उस पर भरोसा करो तो वो अदा न करेगा। ये और बात है कि तुम उसके सिर पर सवार हो जाओ। उनकी इस नैतिक दशा का कारण ये है कि वे कहते हैं, उम्मियों यानी गैर यहूदी लोगों के मामले में हमारी कोई पकड़ नहीं होने की है, और ये बात वे निरा झूठ घड़कर अल्लाह से जोड़ते हैं। हालांकि उन्हें मालूम है कि अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। आखिर क्यों उनसे पूछ न होगी? जो भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा और बुराई से बचकर रहेगा वो अल्लाह का प्रिय बनेगा, क्योंकि परहेजगार लोग अल्लाह को पसंद हैं।
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون।
रहे वे लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा और अपनी कसमों को थोड़े मूल्य पर बेच डालते हैं तो उनके लिए परलोक में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह कयामत के दिन न उनसे बात करेगा, न उनकी ओर देखेगा और न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए तो बड़ी दर्दनाक सजा है। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस प्रकार जबान का उलट फेर करते हैं कि तुम समझो जो कुछ वे पढ़ रहे हैं वो किताब ही का अंश है, जबकि वो किताब का अंश नहीं होता। वे कहते हैं कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह की ओर से है, हालांकि वो अल्लाह की ओर से नहीं होता। वे जानबूझकर झूठ बात अल्लाह से जोड़ देते हैं।
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون।
किसी इंसान का ये काम नहीं कि अल्लाह तो उसको किताब और निर्णय शक्ति और पैगंबरी प्रदान करे और वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर तुम मेरे बंदे बन जाओ। वो तो यही कहेगा कि सच्चे रब्बानी अर्थात प्रभु सेवक बनो, जैसा कि उस किताब की शिक्षा का तकाजा है जिसे तुम पढ़ते और पढ़ाते हो। वो तुमसे हरगिज ये न कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो। क्या ये संभव है कि एक नबी तुम्हें कुफ्र यानी अधर्म और इनकार का आदेश दे जबकि तुम मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हो।
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ شاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون।
याद करो, अल्लाह ने पैगंबरों से वचन लिया था कि आज मैंने तुम्हें किताब और गहरी समझ और बुद्धिमत्ता प्रदान की है। कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास उसी शिक्षा की पुष्टि करता हुआ आए जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है तो तुम्हें उसको मानना होगा और उसकी सहायता करनी होगी। ये कहकर अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी ओर से प्रतिज्ञा की भारी जिम्मेदारी उठाते हो? उन्होंने कहा, हां हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। इसके बाद जो अपनी प्रतिज्ञा से फिर जाए वही अवज्ञाकारी है।
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين।
अब क्या ये लोग अल्लाह के आज्ञा पालन का तरीका यानी अल्लाह का दीन छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? हालांकि आकाशों और धरती की सारी चीजें चाहे अनचाहे अल्लाह की आज्ञाकारी यानी मुस्लिम हैं और उसी की ओर सबको पलटना है। ए नबी, कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, उस शिक्षा को मानते हैं जो हम पर उतारी गई है, उन शिक्षाओं को भी मानते हैं जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और याकूब की संतान पर उतरी थीं, और उन आदेशों को भी मानते हैं जो मूसा और ईसा और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की ओर से दी गईं। हम उनके बीच अंतर नहीं करते और हम अल्लाह के आज्ञाकारी यानी मुस्लिम हैं। इस आज्ञा पालन यानी इस्लाम के सिवा जो व्यक्ति कोई और तरीका अपनाना चाहे उसका वो तरीका हरगिज स्वीकार न किया जाएगा और परलोक में वो असफल रहेगा।
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم।
कैसे हो सकता है कि अल्लाह उन लोगों को मार्ग पर चलाए जिन्होंने ईमान जैसी नेमत पा लेने के बाद फिर कुफ्र यानी अधर्म और इनकार की नीति अपनाई, हालांकि वे खुद इस बात पर गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल सत्य पर है और उनके पास स्पष्ट निशानियां भी आ चुकी हैं। अल्लाह जालिमों को तो मार्ग नहीं दिखाया करता। उनके अत्याचार का उचित बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे इंसानों की फिटकार है। इसी दशा में वे सदैव रहेंगे, न उनकी सजा में कमी होगी और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। हाँ, वे लोग बच जाएंगे जो इसके बाद तौबा करके अपनी नीति में सुधार लाएं। अल्लाह क्षमाशील और दया करने वाला है।
الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين।
किंतु जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र यानी इनकार इख्तियार किया फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, उनकी तौबा हरगिज स्वीकार न की जाएगी। ऐसे लोग तो पक्के गुमराह हैं। विश्वास रखो, जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र ही की दशा में मरे उनमें से कोई अगर अपने आप को सजा से बचाने के लिए धरती भर कर भी सोना बदले में दे तो उसे स्वीकार न किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सजा तैयार है और वे अपना कोई सहायक न पाएंगे।
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين।
तुम नेकी को पहुंच नहीं सकते जब तक कि अपनी वे चीजें अल्लाह के मार्ग में खर्च ना करो जो तुम्हें प्रिय हैं, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे बेखबर ना होगा। खाने की ये सारी चीजें जो मोहम्मद के धर्म विधान में हलाल हैं, इसराइलियों के लिए भी हलाल यानी वैध थी। अलबत्ता कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें तौरात के उतारे जाने से पहले इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने स्वयं अपने लिए हराम यानी अवैध कर लिया था। उनसे कहो, अगर तुम अपनी आपत्ति में सच्चे हो तो लाओ तौरात और प्रस्तुत करो उसका कोई अंश। इसके बाद भी जो लोग अपनी झूठी घड़ी हुई बातें अल्लाह से जोड़ते रहें, वही वास्तव में अत्याचारी हैं। कहो, अल्लाह ने जो कुछ कहा है सच कहा है। तुमको एकाग्रचित्त होकर इब्राहिम के तरीके का अनुपालन करना चाहिए, और इब्राहिम मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से न था।
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين।
निस्संदेह सबसे पहला उपासना गृह यानी इबादत गाह जो इंसानों के लिए निर्मित हुआ वो वही है जो मक्का में स्थित है। उसको भलाई और बरकत दी गई थी और सारे संसार वालों के लिए मार्गदर्शन केंद्र बनाया गया था। उसमें खुली निशानियां हैं। इब्राहिम का उपासना स्थल है और उसका हाल ये है कि जिसने उसमें प्रवेश किया सुरक्षित हो गया। लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जिसको इस घर तक पहुंचने की सामर्थ्य प्राप्त हो वो इसका हज करे, और जो कोई इस आदेश के अनुपालन से इनकार करे तो उसे मालूम हो जाना चाहिए कि अल्लाह संसार के सारे लोगों से बेपरवाह है।
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم।
कहो, ऐ किताब वालो, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो? जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह सब देख रहा है। कहो, ऐ किताब वालो, ये तुम्हारी क्या नीति है कि जो अल्लाह की बात मानता है उसे भी तुम अल्लाह के मार्ग से रोकते हो और चाहते हो कि वो टेढ़ी राह चले, जबकि तुम स्वयं उसके सीधे मार्ग पर होने के गवाह हो? तुम्हारी करतूतों से अल्लाह बेखबर नहीं है। ए ईमान लाने वालों, अगर तुमने इन किताब वालों में से एक गिरोह की बात मानी तो ये तुम्हें ईमान से फिर इनकार की ओर फेर ले जाएंगे। तुम्हारे लिए अधर्म की ओर जाने का अब क्या अवसर बाकी है, जबकि तुमको अल्लाह की आयतें सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे बीच उसका रसूल मौजूद है। जो अल्लाह का दामन मजबूती के साथ थामेगा वो अवश्य ही सीधा मार्ग पालेगा।
या अय्युहा الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون।
ए ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। तुमको मौत ना आए किंतु इस हाल में कि तुम मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हो, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और विभेद में ना पड़ो। अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसकी ओर से तुम पर हुआ है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और उसके अनुग्रह एवं कृपा से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए एक गढ़े के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। इस प्रकार अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे सामने स्पष्ट करता है, शायद कि इन लक्षणों से तुम्हें अपने कल्याण का सीधा मार्ग दिखाई दे जाए।
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور।
तुम में कुछ लोग तो ऐसे अवश्य ही रहने चाहिए जो नेकी की ओर बुलाएं, भलाई का आदेश दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही सफल होंगे। कहीं तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो गिरोहों में बट गए और खुले खुले स्पष्ट मार्गदर्शन पाने के बाद फिर विभेदों में पड़ गए। जिन्होंने ये नीति अपनाई वे उस दिन सख्त सजा पाएंगे, जबकि कुछ लोग उज्जवल चेहरे वाले होंगे और कुछ लोगों का मुंह काला होगा। जिनका मुंह काला होगा उनसे कहा जाएगा कि ईमान की नेमत पाने के बाद भी तुमने अधर्म की नीति अपनाई। अच्छा, तो अब इस अकृतज्ञता के बदले में यातना यानी अजाब का मजा चखो। रहे वे लोग जिनके चेहरे उज्जवल होंगे तो उनको अल्लाह की दयालुता की छाया में जगह मिलेगी और हमेशा वे इसी दशा में रहेंगे। ये अल्लाह के कथन हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, क्योंकि अल्लाह संसार वालों पर जुल्म करने का कोई इरादा नहीं रखता। धरती और आकाश की सारी चीजों का मालिक अल्लाह है और सारे मामले अल्लाह ही के सामने पेश होते हैं।
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون।
अब संसार में वो उत्तम गिरोह तुम हो जिसे इंसानों के मार्गदर्शन और सुधार के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का आदेश देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये किताब वाले ईमान लाते तो इन्हीं के हक में अच्छा था। यद्यपि इनमें कुछ लोग ईमान वाले भी पाए जाते हैं, किंतु इनके अधिकतर व्यक्ति अवज्ञाकारी हैं।
لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون।
ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा बस कुछ सता सकते हैं। अगर ये तुमसे लड़ें तो मुकाबले में पीठ दिखाएंगे, फिर ऐसे विवश होंगे कि कहीं से इनको मदद न मिलेगी। ये जहां भी पाए गए इन पर अपमान की मार ही पड़ी। कहीं अल्लाह के जिम्मे या इंसानों के जिम्मे में शरण मिल गई तो ये और बात है। ये अल्लाह के प्रकोप में घिर चुके हैं, इन पर मोहताजी और पराजय थोप दिया गया है। और ये सब कुछ इस कारण से हुआ है कि ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे और इन्होंने पैगंबरों की अकारण हत्या की। ये इनकी अवज्ञाओं और ज्यादतियों का अंजाम है।
لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون।
किंतु सभी किताब वाले समान नहीं हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधे रास्ते पर कायम हैं, रातों को अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं और उसके आगे सजदा करते हैं। अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, नेकी का आदेश देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं। ये नेक लोग हैं और जो नेकी भी ये करेंगे उसकी उपेक्षा न की जाएगी। अल्लाह परहेजगारों से भली भांति परिचित है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार की नीति अपनाई तो अल्लाह के मुकाबले में उनको न उनका धन कुछ काम देगा न संतान। वे तो आग में जाने वाले लोग हैं और आग ही में हमेशा रहेंगे। जो कुछ वे अपने इस सांसारिक जीवन में खर्च करते रहे हैं उसकी मिसाल उस हवा जैसी है जिसमें पाला हो, और वो उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर स्वयं अत्याचार किया है और उसे तबाह करके रख दे। अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं किया, वास्तव में ये स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं।
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو अपने दल के लोगों के सिवा दूसरों को अपना भेदी न बनाओ। वे तुम्हारी खराबी के किसी अवसर से लाभ उठाने से नहीं चूकते। तुम्हें जिस चीज से हानि पहुंचे वही उनको प्रिय है। उनके मन का द्वेष उनके मुंह से निकला पड़ता है और जो कुछ वे अपने सीनों में छिपाए हुए हैं वो इससे बढ़कर है। हमने तुम्हें साफ साफ हिदायतें दे दी हैं। अगर तुम बुद्धिमान हो तो उनसे संबंध रखने में सावधानी बरतोगे।
أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
تم ان سے پریم کرتے ہو کنتو وے تم سے پریم نہیں کرتے हालांकि तुम समस्त आसमानी किताबों को मानते हो। जब वे तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने भी तुम्हारे रसूल और तुम्हारी किताब को मान लिया है, किंतु जब अलग होते हैं तो तुम्हारे विरुद्ध उनके क्रोध एवं प्रकोप का ये हाल होता है कि अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं। उनसे कह दो कि अपने क्रोध में आप जल मरो। अल्लाह दिलों के छिपे हुए भेद तक जानता है। तुम्हारा भला होता है तो उनको बुरा मालूम होता है और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये प्रसन्न होते हैं, किंतु इनका कोई उपाय तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। शर्त ये है कि तुम धैर्य से काम लो और अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उस पर हावी है।
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
ऐ पैगंबर, मुसलमानों के सामने उस अवसर की चर्चा करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे और उहूद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जगह जगह नियुक्त कर रहे थे। अल्लाह सारी बातें सुनता है और वो बहुत ही खबर रखने वाला है। याद करो जब तुम में से दो गिरोह कायरता दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह उनकी मदद पर मौजूद था और ईमान लाने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर इससे पहले बद्र की लड़ाई में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था, हालांकि उस समय तुम बहुत कमजोर थे। अतः तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो। उम्मीद है कि अब तुम शुक्रगुजार बनोगे।
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين لا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
اے نبی، یاد کرو جب تم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری سہایتا کرے؟ نسندیہ اگر تم دھیر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس کھن تمہارے شترو تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی کھن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 نشان والے فرشتوں سے تمہاری سہایتا کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم پرسن ہو جاؤ اور تمہارے دل سنتشٹ ہو جائیں. وجے اور سہایتا جو کچھ بھی ہے اللہ کی اور سے ہے، جو بڑی شکتی والا اور سوج بوجھ والا ہے، اور یہ سہایتا وہ تمہاری اس لیے کرے گا تاکہ کفر کی راہ پر چلنے والوں کی ایک بھجا کاٹ دے یا ان کو ایسی اپمان جنک پراجے دے کہ وہ اسفلتا کے ساتھ پراست ہو جائیں. اے پیغمبر، نرنے کے ادھیکاروں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو ادھیکار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ اتیاچاری ہیں. دھرتی اور آکاشوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے یاتنا دے، وہ کشماشیل اور دیاوان ہے.
یا ایوہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
اے ایمان لانے والو، یہ بڑھتا اور چڑھتا بیاج کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، آشا ہے کہ سفل ہوگے. اس آگ سے بچو جو ادھرمیوں کے لیے جٹائی گئی ہے. اللہ اور رسول کا آدیش مانو، آشا ہے کہ تم پر دیا کی جائے گی. دوڑ کر چلو اس مارگ پر جو تمہارے رب کی بخشش یعنی کھما دان اور اس جنت کی اور جاتا ہے جس کا وستار دھرتی اور آکاشوں جیسا ہے، اور وہ ایشور سے ان ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو پرتیک دشا میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، چاہے برے حال میں ہوں یا اچھے حال میں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پریے ہیں.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
اور جن کا حال یہ ہے کہ یدی کبھی کوئی اشلیل کاری ان سے ہو جاتا ہے یا کسی گناہ میں پڑ کر وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو تتکال اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی کھما چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی جانتے بوجھتے اپنے کیے پر آگرہ نہیں کرتے. ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی और वहां वे हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है अच्छे कर्म करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत से युग बीत चुके हैं, धरती में चल फिर कर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के आदेशों को झुठलाया। ये लोगों के लिए एक स्पष्ट और खुली चेतावनी है, और जो अल्लाह से डरते हों उनके लिए मार्गदर्शन और उपदेश।
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
हताश न हो, दुखी न हो, तुम ही छा कर रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। इस समय अगर तुम्हें चोट लगी है तो इससे पहले ऐसी ही चोट तुम्हारे विरोधी वर्ग को भी लग चुकी है। ये तो समय के उतार चढ़ाव हैं जिन्हें हम लोगों के बीच गर्दिश देते रहते हैं। तुम पर ये समय इसलिए लाया गया कि अल्लाह देखना चाहता था कि तुम में सच्चे ईमान वाले कौन हैं, और उन लोगों को छांट लेना चाहता था जो वास्तव में सच्चाई के गवाह हों, क्योंकि अत्याचारी अल्लाह को प्रिय नहीं, और वो इस परीक्षा के द्वारा ईमान वालों को अलग छांट कर इनकार करने वालों का दमन कर देना चाहता था। क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में कौन वे लोग हैं जो उसके मार्ग में जाने लड़ाने वाले और उसके लिए धैर्य से काम लेने वाले हैं। तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे, मगर ये उस समय की बात थी जब मौत सामने ना आई थी। लो, अब वो तुम्हारे सामने आ गई और तुमने उसे आंखों से देख लिया।
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ
محمد इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं। उनसे पहले और रसूल भी गुजर चुके हैं, फिर क्या अगर उनकी मृत्यु हो जाए या उनकी हत्या कर दी जाए तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे। याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान न करेगा, अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे उन्हें वो इसकी मजदूरी देगा। कोई प्राणी अल्लाह की अनुमति के बिना नहीं मर सकता। मौत का समय तो लिखा हुआ है। जो व्यक्ति दुनिया में बदला पाने के इरादे से कार्य करेगा उसको हम दुनिया ही में से देंगे, और जो आखिरत के बदले के इरादे से कार्य करेगा वो आखिरत का बदला पाएगा, और शुक्र करने वालों को हम उनका बदला अवश्य प्रदान करेंगे।
قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
इससे पहले कितने ही नबी ऐसे हुए हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से खुदा परस्तों ने युद्ध किया। अल्लाह के मार्ग में जो मुसीबतें उन पर पड़ी उनसे वे हताश नहीं हुए, उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई, वे असत्य के आगे नतमस्तक नहीं हुए। ऐसे ही धैर्यवानों को अल्लाह पसंद करता है। उनकी प्रार्थना बस ये थी कि ऐ हमारे रब, हमारी गलतियों और कोताहियों को क्षमा कर, हमारे कार्य में तेरी सीमाओं से जो ज्यादती हो गई हो उसे क्षमा कर दे, हमारे कदम जमा दे और अधर्मियों के मुकाबले में हमारी सहायता कर। आखिरकार अल्लाह ने उनको इस दुनिया का बदला भी दिया और इससे उत्तम आखिरत का बदला भी प्रदान किया। अल्लाह को ऐसे ही सत्कर्मी पसंद हैं।
या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ अल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला अअकाबिकुम फतनक़लिबू खासिरीन बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر یعنی انکار کا مارگ اپنایا ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم असफल हो जाओगे। उनकी बातें असत्य हैं। वास्तविकता ये है कि अल्लाह तुम्हारा समर्थक और सहायक है और वो सबसे अच्छा सहायक है। जल्द ही वो समय आने वाला है जब हम सत्य का इनकार करने वालों के दिलों में धाक बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनको खुदाई में साझी ठहराया है, जिनके साझी होने पर अल्लाह ने कोई सनद यानी प्रमाण नहीं उतारी। उनका अंतिम ठिकाना जहन्नम है और बहुत ही बुरी है वो ठहरने की जगह जो उन अत्याचारियों को मिलेगी।
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اللہ نے سمرتھن اور سہایتا کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ آرمبھ میں اس کی انمتی سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، کنتو جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں پرسپر وبھید کیا और जैसे ही वो चीज अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसके मोह में तुम गिरफ्तार थे, अर्थात युद्ध क्षेत्र में प्राप्त शत्रु का माल, तुम अपने नायक के आदेश का उल्लंघन कर बैठे, इसलिए कि तुम में कुछ लोग दुनिया के इच्छुक थे और कुछ आखिरत की इच्छा रखते थे। तब अल्लाह ने तुम्हें अधर्मियों के मुकाबले में परास्त कर दिया ताकि तुम्हारी परीक्षा करे, और सत्य ये है कि अल्लाह ने फिर भी तुम्हें क्षमा ही कर दिया, क्योंकि ईमान वालों पर अल्लाह की बड़ी कृपा दृष्टि है।
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
ياد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی اور پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا और रसूल तुम्हारे पीछे तुमको पुकार रहा था, उस समय तुम्हारी इस नीति का बदला अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुमको रंज पर रंज दिए, ताकि आगे के लिए तुम्हें ये शिक्षा मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या मुसीबत तुम पर उतरे उस पर शोकाकुल न हो, अल्लाह तुम्हारे सब कर्मों को जानता है।
أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
इस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत पैदा कर दी कि वे ऊंघने लगे, मगर एक दूसरा गिरोह जिसके लिए सारा महत्व बस अपने हित का था अल्लाह के बारे में तरह तरह के अज्ञान पूर्ण गुमान करने लगा जो बिल्कुल सत्य के विपरीत थे। ये लोग अब कहते हैं कि इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है। इनसे कहो, किसी का कोई हिस्सा नहीं। इस काम के सारे अधिकार अल्लाह के हाथ में हैं। वास्तव में ये लोग अपने दिलों में जो बात छिपाए हुए हैं उसे तुम पर जाहिर नहीं करते। उनका असल मकसद ये है कि अगर नेतृत्व के अधिकार में हमारा कुछ हिस्सा होता तो यहां हम मारे न जाते। इनसे कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वे खुद अपने मारे जाने की जगहों की ओर निकल आते। और ये मामला जो पेश आया ये तो इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में छिपा हुआ है अल्लाह उसे जांच ले और जो खोट तुम्हारे दिलों में है उसे छांट दे। अल्लाह दिलों का हाल भली भांति जानता है।
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
तुम में से जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर गए थे उनके इस फिसलने का कारण ये था कि उनकी कुछ कमजोरियों के कारण शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया। अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला और सहनशील है।
या अय्युहा الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو ادھرمیوں کی سی باتیں نہ کرو जिनके सगे संबंधी अगर कभी सफर पर जाते हैं या युद्ध में सम्मिलित होते हैं और वहां किसी घटना में घिर जाते हैं तो वे कहते हैं कि यदि वे हमारे पास होते तो न मारे जाते और न कत्ल होते। अल्लाह इस प्रकार की बातों को उनके दिलों में पछतावा और संताप का कारण बना देता है, अन्यथा वास्तव में मारने और जिलाने वाला तो अल्लाह ही है और तुम्हारे सभी कर्मों को वही देखता है। अगर तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो दयालुता और क्षमा दान तुम्हारे हिस्से में आएगा वो उन सारी चीजों से उत्तम है जिन्हें ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और चाहे तुम मरो या मारे जाओ प्रत्येक दशा में तुम सबको सिमट कर जाना अल्लाह ही की ओर है।
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ऐ पैगंबर, ये अल्लाह की बड़ी दयालुता है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नर्म स्वभाव के हो, अन्यथा यदि कहीं तुम क्रूर स्वभाव और कठोर हृदय के होते तो ये सब तुम्हारे आसपास से छट जाते. इनके कसूर माफ कर दो, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो और धर्म के कार्य में इनको भी परामर्श में सम्मिलित रखो. फिर जब तुम्हारा संकल्प किसी सम्मति पर सुदृढ़ हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो. अल्लाह को वे लोग प्रिय हैं जो उसी के भरोसे पर काम करते हैं. अल्लाह तुम्हारी सहायता पर हो तो कोई शक्ति तुम पर प्रभावी होने वाली नहीं, और वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो. अतः जो सच्चे ईमान वाले हैं उनको अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए.
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ.
किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वो खयानत कर जाए, और जो कोई खयानत करे वो अपनी खयानत सहित कयामत के दिन हाजिर हो जाएगा. फिर प्रत्येक जीव को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर कुछ जुल्म न होगा. भला ये कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति हमेशा अल्लाह की इच्छा पर चलने वाला हो वो उस व्यक्ति के जैसा काम करे जो अल्लाह के प्रकोप में घिर गया हो और जिसका अंतिम ठिकाना जहन्नम हो, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है. अल्लाह के निकट दोनों प्रकार के आदमियों में बहुत दर्जों का अंतर है, और अल्लाह सबके कर्मों पर नजर रखता है.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
वास्तव में ईमान वालों पर तो अल्लाह ने ये बहुत बड़ा उपकार किया है कि उनके बीच खुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो उसकी आयतें उन्हें सुनाता है, उनके जीवन को संवारता है और उनको किताब और गहरी समझ की शिक्षा देता है. हालांकि इससे पहले यही लोग खुली गुमराहियों में पड़े हुए थे. और ये तुम्हारा क्या हाल है कि जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी तो तुम कहने लगे ये कहां से आई, हालांकि बद्र की लड़ाई में इससे दोगुनी मुसीबत तुम्हारे हाथों विरोधी गिरोह पर पड़ चुकी है. ए नबी, इनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है, अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है.
وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا
इन जो हानि लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंची वो अल्लाह की अनुमति से थी और इसलिए थी कि अल्लाह देख ले कि तुम में से ईमान वाले कौन हैं और मुनाफिक यानी कपटाचारी कौन। वे मुनाफिक कि जब उनसे कहा गया आओ अल्लाह के रास्ते में लड़ो या कम से कम अपने नगर की रक्षा ही करो, तो कहने लगे अगर हम जानते कि आज लड़ाई होगी तो हम अवश्य तुम्हारे साथ चलते। ये बात जब वे कह रहे थे उस समय वे ईमान की अपेक्षा अधर्म के अधिक निकट थे। वे अपने मुंह से वे बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती और जो कुछ वे दिलों में छिपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। ये वही लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे और उनके जो भाई बंधु लड़ने गए और मारे गए उनके बारे में उन्होंने कह दिया कि अगर वे हमारी बात मान लेते तो न मारे जाते। उनसे कहो कि अगर तुम अपने इस कथन में सच्चे हो तो स्वयं तुम्हारी मौत जब आए उसे टाल कर दिखा देना।
वला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين।
جو لوگ اللہ کے مارگ میں مارے گئے ہیں انہیں मुर्दा न समझो, वे तो वास्तव में जीवित हैं, अपने रब के पास रोजी पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपनी उदार कृपा से उन्हें दिया है उस पर प्रसन्न और आनंदित हैं और संतुष्ट हैं कि जो ईमान वाले उनके पीछे संसार में रह गए हैं और अभी वहां नहीं पहुंचे हैं उनके लिए भी किसी डर और रंज का अवसर नहीं है। वे अल्लाह के इनाम और उसकी उदार कृपा पर आनंदित और प्रसन्न हैं और उनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह ईमान वालों का बदला नष्ट नहीं करता।
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين।
ऐसे ईमान वालों के बदले को जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार को स्वीकार किया, उनमें जो लोग नेक और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा बदला है। जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे विरुद्ध बड़ी सेनाएं एकत्र हुई हैं उनसे डरो, तो ये सुनकर उनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और वही सबसे अच्छा कार्य साधक है। आखिरकार वे अल्लाह की नेमत और उदार कृपा के साथ पलट आए, उनको किसी प्रकार की तकलीफ भी न पहुंची और अल्लाह की इच्छा पर चलने का श्रेय भी उन्हें प्राप्त हो गया। अल्लाह बड़ा अनुग्रह करने वाला है। अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो वास्तव में शैतान था जो अपने दोस्तों से अकारण डरा रहा था, अतः आगे तुम इंसानों से न डरना, मुझसे डरना अगर तुम वास्तव में ईमान वाले हो।
वला يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر یعنی انکار اور ادھرم کے مارگ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیوں سے تم دکھی نہ ہو، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے پرلوک میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور آخرکار ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ نشچے ہی اللہ کی کوئی ہانی نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دکھد یاتنا تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ ادھرمی اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ اچھی طرح گناہوں کا بوجھ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے اتینت اپمان جنک سزا ہے.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
اللہ ایمان والوں کو اس دشا میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس سمے پائے جاتے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، کنتو اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں پر پروکش کو پرکٹ کر دے. پروکش کی باتیں بتانے کے لیے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اتہ پروکش کی باتوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. یدی تم ایمان اور پرہیزگاری کی نیتی اپناؤ گے تو تم کو بڑا پرتیدان ملے گا. جن لوگوں کو اللہ نے اپنی ادار انوکمپا سے دیا ہے اور پھر وہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کنجوسی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے لیے بہت ہی بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے اکٹھا کر رہے ہیں، وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا. دھرتی اور آکاشوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
अल्लाह ने उन लोगों की बात सुनी जो कहते हैं कि अल्लाह निर्धन है और हम धनी हैं। उनकी ये बातें भी हम लिख लेंगे, और इससे पहले जो वे पैगंबरों की अकारण हत्या करते रहे हैं वो भी उनकी कर्म पत्री में अंकित है। जब फैसले का समय आएगा उस समय हम उनसे कहेंगे कि लो अब नरक यातना का मजा चखो, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, अल्लाह अपने बंदों के लिए जालिम नहीं है। जो लोग कहते हैं अल्लाह ने हमको आदेश दे रखा है कि हम किसी को रसूल स्वीकार न करें जब तक वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न करे जिसे परोक्ष से आकर आग खा ले, उनसे कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं जो बहुत सी स्पष्ट निशानियां लाए थे, और वो निशानी भी लाए थे जिसकी बात तुम करते हो। फिर यदि ईमान लाने के लिए ये शर्त रखने में तुम सच्चे हो तो उन रसूलों की तुमने हत्या क्यों की? अब ऐ नबी, अगर ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो बहुत से रसूल तुमसे पहले झुठलाए जा चुके हैं जो खुली खुली निशानियां और सहीफे और प्रकाशदायक किताबें लाए थे। आखिरकार प्रत्येक व्यक्ति को मरना है और तुम सब अपना पूरा पूरा बदला कयामत के दिन पाने वाले हो। कामयाब वास्तव में वो है जो वहां जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में पहुंचा दिया जाए। रहा ये संसार तो ये केवल एक बाह्य धोखे की चीज है।
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير।
मुसलमानों, तुम धन और प्राण दोनों की परीक्षा में अवश्य ही डाले जाओगे, और तुम किताब वालों और मुशरिकों यानी बहुदेव वादियों से बहुत सी कष्टदायक बातें सुनोगे। अगर इन सब स्थितियों में तुम धैर्य और धर्म परायणता की नीति पर जमे रहो तो ये बड़े साहस का काम है। इन किताब वालों को वो वचन भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने उनसे लिया था कि तुम्हें किताब की शिक्षाओं को लोगों में फैलाना होगा, उन्हें गुप्त रखना नहीं होगा, किंतु उन्होंने किताब को पीठ पीछे डाल दिया और थोड़े मूल्य पर उसे बेच डाला। कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। तुम उन लोगों को यातना से सुरक्षित न समझो जो अपनी करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों की सराहना उन्हें प्राप्त हो जो वास्तव में उन्होंने नहीं किए हैं। निश्चय ही उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। धरती और आकाश का मालिक अल्लाह है और उसकी कुदरत सब पर हावी है।
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار।
धरती और आकाशों की रचना में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन बुद्धिमानों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं, और आकाश और धरती की संरचना में सोच विचार करते हैं। वे बेख्तियार बोल उठते हैं, हमारे रब, ये सब कुछ तूने व्यर्थ और बेमकसद नहीं बनाया है, तू पाक है इससे कि निरर्थक कार्य करे। अतः ऐ रब, हमें नरक की यातना से बचा ले। तूने जिसे नरक में डाला उसे वास्तव में बड़ी अपमान दशा और दुर्गति में डाल दिया, और फिर ऐसे जालिमों का कोई सहायक न होगा।
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد।
हमारे मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की ओर बुलाता था और कहता था कि अपने रब को मानो। हमने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अतः ए हमारे मालिक, जो अपराध हमसे हुए हैं उनको क्षमा कर दे, जो बुराइयां हम में हैं उन्हें दूर कर दे, और हमारा अंत नेक लोगों के साथ कर। हमारे रब, जो वादे तूने अपने रसूलों के माध्यम से किए हैं उनको हमारे साथ पूरा कर, और कयामत के दिन हमें रुसवाई में न डाल। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है।
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب।
जवाब में उनके रब ने कहा, मैं तुम में से किसी का कर्म अकारथ करने वाला नहीं हूँ, चाहे मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे के सहजाती हो। अतः जिन लोगों ने मेरे लिए अपने वतन छोड़े और मेरे रास्ते में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, उन सब के गुनाह मैं माफ कर दूंगा, और उन्हें ऐसे बागों में प्रवेश करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये उनका बदला है अल्लाह के यहाँ, और अच्छा बदला अल्लाह ही के पास है।
تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار।
ए नबी, संसार के देशों में अल्लाह के नाफरमान लोगों की चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में ना डाले। ये केवल थोड़े दिनों के जीवन का थोड़ा सा आनंद है, फिर ये सब जहन्नम में जाएंगे, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। इसके विपरीत जो लोग अपने रब से डरते हुए जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। उन बागों में वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह की ओर से आतिथ्य सामग्री है उनके लिए, और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वही सबसे अच्छा है।
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ। يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون।
किताब वालों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, इस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी ओर भेजी गई है, और उस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो इससे पहले खुद उनकी ओर भेजी गई थी। अल्लाह के आगे झुके हुए हैं और अल्लाह की आयतों को थोड़े से मूल्य पर बेच नहीं देते। उनका बदला उनके रब के पास है और अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं लगाता। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, धैर्य से काम लो, असत्यवादियों के मुकाबले में जमे रहो, सत्य की सेवा के लिए कमर कसे रहो और अल्लाह से डरते रहो, उम्मीद है कि कामयाबी पाओगे।